Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
उस सौ गुना आनंद देवताओं का आनंद है, उस सौ गुना आनंद इंद्र का आनंद है, उस सौ गुना बृहस्पति का आनंद है, उस सौ गुना प्रजापति का आनंद है और उस सौ गुना ब्रह्मा जी का आनंद है। अब ये मैंने 10^10 लगाए ना, तो अब दो दो बढ़ाते जाओ तो ये 21 हो गया है। 10^21 का क्या मतलब हुआ कि हाँ, मैंने एक लिखो और 21 जीरो और लगा दो उसके आगे, तो 22 अंक अक्षर अंक हो गए ना, 22 अंक। अब आप अपनी गिनती गिन लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, वो तो 20 पे ही जाकर खत्म हो जाती हैं। महासंख जो है वो 20वीं है। तो 10^21 का मतलब है गिनती का आनंद नहीं है, अपरमित है। तो ये ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ना कि अब के जो नई सृष्टि होगी, हालांकि उनके हिसाब से तो हो चुकी, उनका साइकिल तो पूरा हो गया। वो कहते हैं जो नई सृष्टि होगी उसमें हमारे जो गुरु जी थे दादा लेखराज, वो ब्रह्मा जी बनेंगे और हम लोग जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं ये फिर अजानज देवता हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी मतलब किसी खंड ब्रह्मांड के ब्रह्मा तो कर्म से हो जाते हैं, लेकिन सृष्टि के शुरू में जो ब्रह्मा जी होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। ये तो पुराणों ने ज्यादा छीछाले दर कर दिए ब्रह्मा जी के, नहीं तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक ही कक्षा है। तो ये ब्रह्मा जी का आनंद हुआ। अब हर जगह मैंने मूल में पढ़ा नहीं है तो हर जगह आप देख लेना, इसमें हर जगह ये लिखा है कि जो आनंद जैसे इसका आया मनुष्य गंधर्व का आनंद, बोले वो जो मनुष्य गंधर्व का आनंद है वो आनंद उसको अपने आप ही प्राप्त है जिसकी कोई कामना नहीं है। अकाम हतस्य श्रोत्रियस्य अकाम हतस्य, शास्त्र का विद्वान है श्रोत्रियस्य, लेकिन शास्त्र का विद्वान होना अलग बात है और कामना न होना ये अलग बात है। विद्वानों में तो कुछ ज्यादा ही कामना हो जाती है। तो बोले जो विद्वान भी हो और महात्मा हो अभिप्राय है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ उसके पास है ये अलग बात है और उसे कुछ चाहिए ये अलग बात है। बोले हमको ये चीज मिल जाए तो आप उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहे हो और आप चलते जा रहे हो और रास्ते में आपको एक अशर्फी पड़ी हुई मिल गई, तो आपने उस अशर्फी को अपनी तरफ खींचा नहीं है, लेकिन आपको अकाम हतस्य है, कामना नहीं है। तो बोले क्या पड़ा है, क्या अशर्फी पड़ी है? बोले रास्ते की पड़ी चीज पे तो सरकार का अधिकार होता है, हमारा तो अधिकार है नहीं, छोड़ के आगे चल दिए। और ये अकाम हतस्य है। और बोले उठा लो, फिर सोचेंगे क्या करें, इसे अपने काम में लें कि दान कर दें कि क्या करें इसका। अब महाराज वो एक महात्मा को 5 अशर्फी दे गया, वो विरक्त थे, अब सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। बोले मैं क्या करूं इनका, क्या करूं क्या करूं। सुबह गुरुजी के पास गए, वो गुरुजी ये 5 अशर्फी दे गया तो बोले बेवकूफ तैने लिए क्यों? बोले कि मैंने तो बहुत मना किया था, वो माना ही नहीं, रख गया, बोला किसी को दे देना। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं किसको दूं, तो मैं तो रात भर सोया नहीं। तो बोले वहां से गोबर उठा के ला। लाया वो गोबर उठा, बोले गोबर इसके ऊपर डाल, अशर्फियों के ऊपर डाल दिया। बोले अब अशर्फी पे हाथ न लगे, गोबर समेत अशर्फी उठा ले। बोले उठा ली, बोले गंगा जी में फेंक दो, फेंक दी। बोले अब शांति हो गई। अब ये विकल्प ही नहीं है कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना है, अपने काम में लूं। ये आज की फिलॉसफी में तो सही नहीं बैठता है, लेकिन वहां आज की फिलॉसफी हो या कई उपनिषद ने तो ये कहा कि तेन त्यक्ते न भुंजिता, उसके त्याग पूर्वक भोग करो। तो दो तरीके से अर्थ करते हैं इसका। शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं कि उसे अपने काम में मत लाओ, तेन त्यक्ते न भुंजिता, त्याग पूर्वक, और फिर अपना बस पालन करने, शरीर को पालन करने का अधिकार तो है, इससे ज्यादा का तुम्हारा अधिकार नहीं है। और जो वैष्णव महात्मा है वो इसका करते हैं, तेन ईश्वरेन त्यक्त्वा, ये ईश्वर ने त्याग किया है अपने लक्ष्मी का, किस लिए कि तुम्हारे लिए, इसलिए ईश्वर की संपत्ति समझ करके इसको अपने काम में ले आओ, ये वैष्णवों का अर्थ है। अब नारायण ये तो अपनी अपनी भूमिका है, जैसी जिसको पसंद आती है। तो जो अकामहत है, माने कामनाओं ने जिसके अंतःकरण को घायल नहीं किया है, अकामहत, काम हत माने घायल और काम माने कामना, तो कामहत माने कामना से जो घायल है और अकामहत माने कामना से जिसका अंतःकरण घायल नहीं है। और श्रोत्रिय माने शास्त्र का यथार्थ ज्ञान उसको है, तो उसको वो सुख जो है वो पहले से ही प्राप्त है। महाराज जी ऐसे बोलते थे कि किसी को प्यास लगी तो उसने गया लोटा डोर लेकर के कुएं में से पानी खींचा, पिया, तृप्त हुआ, फिर जो साथ में था उसके लिए पानी ले आया हो, बोले भाई तुम भी पानी पी लो, बोले नहीं मुझे तो प्यास ही नहीं है। अब जिसको प्यास नहीं है उसके क्या जबरदस्ती हलक में डालोगे कि नहीं तुम्हें पीना पड़ेगा ये? तो अकामहत माने जिसको सुख की प्यास नहीं है, जो अपने ब्रह्मानंद में मग्न है और श्रोत्रिय है, उसके लिए तो ये सब आनंद पहले से ही प्राप्त हैं। तो इस अनुवाक में ये बात बताई गई कि ये तो सब आनंदमय कोष हैं। आनंद में कोष के आनंद जो हैं ये कर्म और उपासना के फल होते हैं, और जो ब्रह्मानंद होता है वो किसी कर्म उपासना का फल नहीं होता है, वो अपने स्वरूप के ज्ञान का बोध होता है, ज्ञान रूप है। तो आनंद में कोष और ब्रह्मानंद, इसमें तीन भेद कर लीजिए। आनंद में कोष हेतु फलात्मक है, कर्म से या उपासना के फल के रूप में ये प्राप्त होता है, और ब्रह्मानंद जो है वो हेतु फलात्मक नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं है, उसका स्वरूप ही आनंद है, वो जैसा है वैसा ही आनंद रूप है। दूसरे इसमें भोक्ता भोग्य का भेद होता है। आनंद में कोष में कुछ आनंद है जो भोग्य है और मैं उसका भोगता हूं, ये भेद बना रहता है, आहा बड़ा मजा आ रहा है, तो मैं भोग रहा हूं और किसी चीज का मजा ले रहा हूं, और बीच में मजा है, चीज है वो तो हो गया भोग्य, और मैं भोगने वाला और बीच में मजा माने भोग का सुख आनंद, नारायण। तो भोक्ता भोग भोग की त्रिपुटी जो है वो आनंदमय कोश में बनी रहती है, जबकि ब्रह्मानंद में ये त्रिपुटी नहीं रहती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा यह है कि ब्रह्म जो है वो निरवयव है। निरवयव माने उसमें कोई हिस्से नहीं है, एक अखंड है। और आनंदमय कोश में हिस्से बताए, प्रिय है, मोद है, प्रमोद है, आनंद है, तो एक भेद रूप है आनंद होते हुए, एक में भेद है, और एक आनंद होते हुए अभेद है। यही आनंद में कोश का आनंद और ब्रह्मानंद में अंतर है। आनंद में कोश की अवहेलना आप कर नहीं सकते हो नारायण, ये विचार करके आप इसे देखना, ये ज्ञान का जोश जो है ये ठीक नहीं है। ज्ञान के जोश में क्या होता है कि हम कर्म उपासना की अवहेलना कर देते हैं। अगर आपके मन को, माने जिसको प्यास है सुख की, उसके लिए कोई लंगर नहीं है, कहीं उसे आप डाल करके नहीं रखते हो, तो वो भटक जाएगा, कहीं ना कहीं अनर्थ में चला जाएगा। अगर आपने अपने मन को ये आदत डाल ली कि भगवान के किसी नाम रूप में सुख बुद्धि कर ले शास्त्र के अनुसार, और उसी का मन को अभ्यास हो, तो जब भी आपका मन खाली होगा तो वहीं जाकर लटक जाएगा, अपने आप ही लटक जाएगा। इसलिए उसे दूसरी जगह जाने का अवकाश ही नहीं होगा। और अगर ऐसा अभ्यास नहीं है तो फिर तो जाएगा जरूर कहीं ना कहीं, अधर्म में भी जा सकता है, अनुचित में भी जा सकता है, प्रमाद में भी जा सकता है, और इन सब का फल दुख ही है। अब इसके बाद सातवां अनुवाक जो है वो प्रारंभ होता है। ये सातवां अनुवाक जो है इसमें ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय कोश की जो पूंछ है, माने जो जिसके ऊपर ये आधारित है, इसका जो आधार है सब सुखों का, वो ब्रह्म है। तो कल आपको ये बात बता दी थी कि अनुभव तो आनंदमय का ही हो सकता है, केवल आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। उपाधि रहित आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव करेगा कौन? कहो कि ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव करेगा तो आत्माश्रय दोष पड़ता है। बोले नहीं, जीव ब्रह्म का अनुभव करेगा तो फिर जीवत्व तो शेष ही है, उपाधि भी आपको माननी पड़ेगी, तो इसलिए वो तो आनंदमय आनंद रहा। तो आनंद यदि भोग्य नहीं है तो उस आनंद से आपका जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। और यदि वो हमेशा भोग्य ही बना रहे तो वो आनंद विनाशी होगा, वो आपको छोड़कर जाएगा या आप उसको छोड़कर जाएंगे, और तब दुख की सृष्टि होगी। बोले हम तो नहीं सोचते थे ऐसा हो जाएगा। तो क्यों नहीं सोचते थे भाई? संयोग विप्रयोगांता, प्रत्येक संयोग जो है वो वियोग उसका फल है, उसका अंत जो है वो वियोग में ही होता है। आज दो व्यक्ति साथ साथ हैं तो ये बाई चांस नहीं है नारायण, इसमें दोनों का प्रारब्ध का योग है। अब वो योग समाप्त हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे। कोई वस्तु हमारे पास है तो उसमें भी वस्तु का और व्यक्ति का जो संयोग हो रहा है, इसमें भी प्रारब्ध ही काम कर रहा है। जब वो प्रारब्ध चुक जाएगा तो वस्तु अपने आप ही आपसे हट जाएगी या आप उससे हट जाओगे। बस ये जो वैराग्य है ना, ये तो प्रारब्ध से नहीं होता। प्रारब्ध में वैराग्य के बीज तो रहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। होता ये पुरुषार्थ का विषय है। अगर आपको वैराग्य हो जाए तो कितनी भी आनंद से आनंद देने वाली वस्तु क्यों ना हो, वो आपको नहीं चाहिए, उतार के फेंक दो। और यदि आसक्ति उदय हो जाए तो भले ही आपने वैराग्यवान का बाना पहन रखा हो, लेकिन आप रहेंगे उसी के साथ, उसी को अपनी तरफ खींचेंगे, और फिर वो खींचेगी तो हटेगी भी, तो दुख और सुख इसी के द्वंद्व में रहेंगे। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि जितना भी आनंद है वो तो सब आनंदमय कोष का ही आनंद है, क्योंकि भोग्य आनंद होता है। अब ये ब्रह्मानंद तो अभोग्य आनंद है, तो ऐसा ही क्यों ना मान लें कि ये ब्रह्मानंद नाम की कोई चीज ही नहीं है, किसी अज्ञात और अज्ञेय वस्तु के पीछे हम भागते फिरे सारी जिंदगी और उसका अनुभव ही ना हो। अच्छा, आप मन में सोच लेना, प्रश्न तो मैं कर रहा हूं, उत्तर अपने मन में सोच लेना। ब्रह्म कभी अनुभव का विषय होता है? तो ब्रह्म जो है वो कभी अनुभव का विषय नहीं होता है। ब्रह्म तो अनुभव स्वरूप होता है। अनुभवात्मा जो है वो ब्रह्म है, जो अनुभव करने वाला है वो ब्रह्म है, उसमें अन्य की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब गुंजाइश नहीं है तो आप तो हो, तो जो हो सो हो, उसमें ब्रह्म विचार करने की जरूरत क्या है? तो एक ने कहा कि ब्रह्म है ही नहीं, दूसरे ने कहा कि हो भी तो उसका अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए वो पुरुषार्थ करने योग्य नहीं है। इसको बोलते हैं अविद्या कोष। आनंदमय कोष के बाद में ये अविद्या कोष है। ये जब नास्तिकता चित्त में आती है ना, तब ऐसे भाव मन में आते हैं, अरे जो है उसका मजा ले हो, जो नहीं है उसके पीछे काहे लिए पड़ते हो। तो श्रुति कहती है कि असन्नेव स भवति, ये सातवां अनुवाक है, असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति चेद वेदो। जो कहता है कि ब्रह्म असत है ही नहीं, तो वो तो स्वयं भी असत हो जाता है, क्योंकि आत्मा जो है वो ब्रह्म से कोई अलग वस्तु तो है नहीं। तो ब्रह्म नहीं है कहने का क्या मतलब है कि तुम भी नहीं हो? मैं भले ही अपने शरीर को ही मैं मानता हूं, लेकिन हूं तो असल में मैं आत्मा ही। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ब्रह्म नहीं है, तो दूसरे शब्दों में यही तो कहना हुआ ना कि आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है माने मैं नहीं हूं। तो ये तो बदतो व्याघात हो गया है। मेरे मुंह में जीव नहीं है। अच्छा, तो कौन बोल रहा है भैया तुम्हारे मुंह में जीव नहीं है? बोल भी रहे हो और कह रहे हो मेरे मुंह में जीव नहीं है, तो मैं कर भी रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं नहीं हूं। तो चूंकि मैं हूं, यही सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्म है। एक बात तो यह बताई। एक इसमें यह भी बात है, असत दो प्रकार का होता है। ब्रह्म में असत भाव कि ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, और एक बोले ब्रह्म नाम की चीज तो है लेकिन उसका कोई जानने का उपाय नहीं है। शंकराचार्य भगवान तो लिखते हैं कि न तो अगर जो कहता है कि ब्रह्म नहीं है, तो न तो उसे वर्णाश्रम धर्म में कोई रुचि होगी, क्योंकि वो कहेगा ये तो जरूरत ही नहीं है इसकी, मनुष्य हैं, खाते हैं पीते हैं, जो काम पशुओं का होता है वो हम भी करते हैं। अब आजकल की फिलॉसफी क्या है बोले ये तो ये काम तो कुत्ते भी करते हैं। अरे तो तुम कुत्ते हो क्या नारायण, ये काम तो पशु भी करते हैं। मन हीन दृष्टांत को लेकर के अपने वासना को पुष्ट करते हैं। ये क्यों नहीं कहते हो कि सुखदेव ऐसा नहीं करते थे, वामदेव ऐसा नहीं करते, वो भी तो मनुष्य थे। तो उच्च आदर्श को तो पकड़ते नहीं है, और कहां मनुष्य से भी नीचे आदर्श में जाकर के बुद्धि ठहरती है। तो पशुओं के धर्म को की तुलना करके और फिर वही धर्म मनुष्य में बताते हैं, बोले ये तो नेचुरल है, नेचुरल इम्पल्स है। नेचुरल के नाम पे जो है ये असत धर्म का प्रचार हो रहा है। तो असत धर्म दो है, वर्णाश्रम धर्म को न मानना, क्योंकि जो नहीं मानता वो कभी संन्यास की सोचेगा ही नहीं। आश्रम धर्म में संन्यास तो आएगा ना, तो हाईएस्ट प्लेन की बात जब आप नहीं सोचते हैं, हमें कहां ऊंचे से ऊंचा पहुंचना है, तो फिर जहां है वहीं मरमर करते रहेंगे बस। और जो ब्रह्मत्व का बोध है वो भी कभी नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि संन्यास से ब्रह्म का ज्ञान होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एक जीवन शैली की उच्चतम अवस्था है, जिसमें मनुष्य जो है सब बातों से बेफिक्र होकर के सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करता है। तो ये आदर्श यदि जीवन में होगा तो जो छोटे छोटे आदर्श हैं वो सब फीके पड़ जाएंगे। अच्छा, मैं शरीर से मान लो ब्राह्मण तो नहीं हूं, लेकिन मेरी ब्राह्मण पने में महत्व बुद्धि हो, तो कम से कम ये तो होगा कि भगवान आपके कोई पाप हो गया होगा तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे तो मुझे ब्राह्मण बना किम पुनः ब्राह्मण भक्ता राजर्षयस्त था। अच्छा, और अगर ये समझ में आ जाए, एक उपनिषद है उसका नाम है वज्र सूचिकोपनिषद, वज्र सूचिकोपनिषद नाम है उसका, छोटा उपनिषद है। तो वो यहां से प्रारंभ होता है, कोयम ब्राह्मणो नाम, ब्राह्मण किसको कहते हैं यहीं से वो प्रारंभ होता है। तो उसमें बताते गए शरीर ब्राह्मण है, माता पिता ब्राह्मण है, शरीर ब्राह्मण है, प्राण ब्राह्मण है, और सब में सबको काटते चले गए, और अंत में जाकर के कहा कि जो अपने को ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण है। ये वज्र सूचिकोपनिषद जिनको प्राप्त हो वो देख लेना, उसमें 108 उपनिषदों में उसकी गिनती है। तो ये शरीर का जो वर्ण है ये इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया है कि ये परमात्मा के लिए समर्पित होना चाहिए, और अगर हम उच्च वर्ण के होने पर भी निम्न बातों को ही ग्रहण करते हैं तो वो पर वर्ण तो बेकार हो गया ना। तो वर्णाश्रम धर्म जो है ये परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है, और आश्रम धर्म का तो खूब पालन करते हैं। हमारे वृंदावन में एक थे, अब तो शरीर नहीं रहा, उनका गुरुजी धर्म संघ के गुरुजी बोलते थे उनको, तो वो वर्णाश्रम के इतने भक्त थे कि उनकी सानी का कोई दूसरा अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। करपात्री जी महाराज के शिष्य थे वो, लेकिन वेदांत की चर्चा करो तो बिल्कुल उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, वेदांत में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणोचित धर्म जो था उनका वर्ण धर्म उसके वो कट्टर पालन करने वाले थे। तो नारायण वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म विचार करना, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। तो जो ब्रह्म को ही नहीं मानता वो वर्णाश्रम को भी नहीं मानेगा और वो ब्रह्म विचार भी नहीं करेगा और कभी सन्यासी होने का तो प्रश्न ही नहीं है नारायण। तो कम से कम एक जन्म नहीं तो तीन जन्म तो नारायण उसको लेने पड़ेंगे। और अगर वर्णाश्रम का भी पालन नहीं करता है तो फिर तो जाने कितने लेने पड़ेंगे, किसी का कुछ पता नहीं। तो ये असन्नेव सभवती, इसकी व्याख्या में शंकराचार्य जी ने ये बात लिखी है कि वो स्वयं भी असत हो जाता है। जब ब्रह्म नहीं है तो आत्मा ही कहां से होगा, आत्मा ही तो ब्रह्म है। तो स्वयं भी असत हो जाता है और चूंकि वो अपने को आत्मा नहीं मानता, मानना चाहता भी नहीं है, तो अपने को शरीर ही मानेगा और शरीर भी पशुओं की तरह से बर्ताव करेगा, वर्णाश्रम धर्म में कोई उसको रुचि नहीं होगी और ब्रह्म विचार भी नहीं करेगा, तो वो असत मार्ग में भटक जाएगा। यही शब्द लिखे वो भटकेगा माने एक योनि नहीं, कई योनियां उसको प्राप्त करनी पड़ेंगे। और ये मत समझना, आजकल ऐसे भी बोलते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, वो नीचे क्यों जाएगा। और अपने यहां तो सामान्य शास्त्र भी यही कहता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये तो आपकी मनोवृत्ति जिस प्रकार की है, देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, पशु पक्षी भी बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, नारकी प्राणी भी बन सकते हैं, ये तो आपके कर्म और भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए भाई परमात्मा है इसको मानना चाहिए, कभी नास्तिकता की बुद्धि नहीं धारण करनी चाहिए। अब शेष चर्चा कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।